अनुक्रम तीसरा, पृष्ठ संख्या 65, माया का आधुनिकीकरण। माया भारतीय साहित्य और दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द है। ऋग्वेद से 20वीं शताब्दी तक इस शब्द और इससे संकेतित होने वाले अर्थ को लेकर अत्यधिक विचार मंथन और मंतव्य प्रतिपादन किया गया है। दर्शन, शंकराचार्य के जिस दर्शन को विश्व का अद्वितीय दर्शन मानते हैं उसे मायावाद कहा है। पैराग्राफ चेंज, इस माया का अर्थ करने में सायण से लेकर आज तक के विद्वान लगे हुए हैं। कबीर जिस युग में पैदा हुए थे उस समय मायावाद की चर्चा बड़ी व्यापक थी, क्योंकि आचार्य शंकर के मायावाद का खंडन सगुण समर्थक वैष्णव वेदांतिक आचार्यों का केंद्रीय विषय था। एक ही शब्द को अनेक जीवन दृष्टियों का वाचक बनाने का प्रयास जब और जहाँ किया गया है, अर्थगत वैविध्य और गड्यमड वहाँ नितांत स्वाभाविक होता है। एक शब्द की तीन व्युत्पत्तियों का यही कारण होता है। पैराग्राफ चेंज, विद्वानों ने माया शब्द की तीन व्युत्पत्तियों का संधान किया है। संस्कृत की म धातु से उत्पन्न मानने पर माया शब्द परिधि, सीमा या माप का अर्थ देता है। कुछ विद्वान माया को इसी अर्थ में समझने का आग्रह करते हैं। माँ धातु से ही उत्पन्न मानने वाले जिमर ने माया को तैयार करना, रूप देना या बनाने के अर्थ में स्वीकार किया है। पृष्ठ संख्या 66, ग्रासमान जैसे कतिपय अन्य विद्वानों ने माया को म ब्रैकेट में मन धातु से व्युत्पन्न मानकर इसे मनन, विश्वास, कल्पना और अनुमान का समानार्थी बताया है, और इन अर्थों के समर्थन के लिए ऋग्वेद के उदाहरण भी दिए हैं। थियम, डिब्रुनर, मिनार्ड आदि कुछ अन्य विद्वानों ने माया को मी धातु से उत्पन्न माना है। पैराग्राफ चेंज, प्राचीन भारतीय वाङ्मय में प्रयुक्त माया शब्द तथा उसकी अर्थ सीमा को स्पष्ट करने के प्रयास में आधुनिक विद्वानों ने कभी इसे भ्रमजनक शक्ति कहकर समझा समझाया तो कभी जादू टोना या छल मक्कारी तथा विश्व की नियामिका शक्ति कहकर। कतिपय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय आस्था, विश्वासों और सिद्धांतों की यातु प्रधानता को ध्यान में रखकर माया को छल द्वारा धारण किए गए रूप, व्यंजना, कपट, मक्कारी, जादू, चालबाजी, टोना टोटका आदि कहा है। पृष्ठ संख्या 67, कुछ अन्य विद्वानों ने किसी देवता या राक्षस की उस शक्ति को माया कहा है जिसके द्वारा वह भ्रामक परिणाम पैदा करता है, रूप परिवर्तन करता रहता है और कपट वेश धारण करता है। इसी तरह कुछ लोगों ने माया को जादुई आदि भौतिक शक्ति भी कहा है। पैराग्राफ चेंज, इतनी सारी व्युत्पत्तियों और इतने सारे अर्थ प्रकट है कि माया शास्त्रार्थ का विषय है। इसी के साथ यह भी प्रकट है कि कबीर शास्त्रार्थ को निरर्थक मानते हैं, अतः उनकी माया स्वभावतः इनसे भिन्न होगी। आधुनिक मनुष्य कृत्रिम समस्याओं और सैद्धांतिक शब्द योजना में कोई रुचि नहीं रखता। प्रसिद्ध आधुनिक चिंतन गैब्रियल मार्सेल ने अपने बौद्धिक आत्मचिंतन में आधुनिक दर्शन की अनेक समस्याओं को ज्ञान चर्चा का विषय बताकर उसके प्रति अरुचि प्रदर्शित की है। मौलिक अनुभूतिवादी ब्रैकेट में रेडियर एम्पिरिसिस्ट किंकेगार्ड, स्पेंसर, सार्त्र, हेडगर आदि आधुनिक तत्व चिंतकों ने भी ऐसा ही किया है। मध्यकालीन भारतीय तत्व चिंतकों में कबीर भी सीधी बात को सीधे तरीके से समझने समझाने का समर्थन करते हैं। बात अगर टेढ़ी हो तो भी उसे सीधा कर देना, उसे जीवन के यथार्थ के साथ संयुक्त कर देना ही कबीर की दृष्टि में तत्ववेत्ता की निशानी है। जो बात को तर्क फेनिल बनाकर उलझा दे कबीर उन्हें कोई महत्व नहीं देते। पैराग्राफ चेंज, कबीर व्यवहारवादी थे। उनका पक्का विश्वास था कि शास्त्रार्थ अर्थात बहस के लिए बहस का कोई मूल्य नहीं है। जो जितना वाक्पटु है वह उतना बड़ा विद्वान है। पुस्तकी विद्या की इस मूल्यहीनता से कबीर परिचित थे। वे दीपक को इसलिए बहुमूल्य नहीं समझते थे कि वह दीपक है। दीप का मूल्य उनकी दृष्टि में यह है कि वह अंधेरे में न दिखने वाली चीज को दिखा देता है। बस अगोचर वस्तु मिली और दीपक बुझा दिया गया। पृष्ठ संख्या 68, पुस्तकी विद्या का भी यही हाल है। पढ़ने, गुणने या वेद पुराण सुनने का प्रयोजन ही क्या है यदि उस पठन, मनन और श्रवण में परम सत्य का साक्षात्कार ही न हो। और यदि भगवान की कृपा से पढ़ने लिखने से सत्य का साक्षात्कार हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। ज्ञान हो गया, मन की प्रतीति हो गई, अब फिर क्या चाहिए? जिसे विश्वास हो जाए पर भी विश्वास न हो उस अंधे के लिए पढ़ना निरर्थक है। जैसे अंधियारे दीपक चाहिए तब वस्तु अगोचर लहिए, जब वस्तु जगोचर पाई तब दीपक माही समाई। का पढ़िए का गुणिए, का वेद पुराना सुनिए, पढ़े गुने का होई, जऊ सहज न मिलो सोई। कहे कबीर मैं जाना मन पतियाना, अतियाना तो न पतीजे, तो अंधे को का कीजे। अतः कबीर पुस्तकी विद्या के लिए बस इतनी सी छूट देते हैं कि मन अगर किसी बात को न समझ रहा हो तो उसे समझाने के लिए हिंदू वेद पुराण पढ़ ले, मुसलमान तरीकत के लिए कुरान देख ले। मन के समझाने के लिए थोड़ा ज्ञान ठीक है, अगर यह पढ़ना मात्र मानसिक विलास हो या केवल पुण्य के लिए धर्मशास्त्रों को पढ़ा जाता हो तो कबीर उसे एकदम छोड़ देने की सलाह देते हैं। उन्होंने भी शायद उपयोगी मानकर पढ़ना शुरू किया था और अनुभव किया था कि पढ़ने से तो अच्छा योग है, वैसे स्वीकारने लायक योग भी नहीं था, इसलिए उन्होंने योग को भी छोड़ दिया था और लोगों की निंदा की परवाह किए बिना भक्ति को स्वीकार किया था। पृष्ठ संख्या 69। इस भक्ति को छोड़ने का उनका मन कभी नहीं हुआ, इसलिए पुस्तक बहाकर वे राम का नाम जपने की सलाह देते हैं। जैसे कबीर पढ़िया दूरी करी, पुस्तक देई बहाय, बावन अखीर सोंध के, डरे ममे चित लाई, मैं जानो पढ़िबो, भले पढ़िबा ते भल जोग, भगति न छाड़ो राम की, भावे निदई लोग, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पैराग्राफ चेंज। कबीर पढ़ने का एक ही प्रयोजन स्वीकार करते हैं कि यह पढ़ना हृदय में पीड़ा पैदा कर दे, व्यक्ति को कर्म के प्रति प्रेरित कर दे, क्योंकि यही काम ही राम से मिलाता है। जो पढ़ गुनकर अपने आसपास के वर्तमान को, उसकी आशा आकांक्षा, सुख दुख और व्यवहार वृत्ति को समझ नहीं सका, या समझ कर भी जिजीविषा के मार्ग में अड़ी हुई बाधाओं से टक्कर नहीं ले सका, उसके लिए कबीर के मन में कोई सहानुभूति नहीं। यही कारण है कि दिन रात माया को अनिवर्चनीय और झूठी प्रतिपादन करने वाले पांडे व्यवहारिक जीवन में जब माया के पीछे बेतहाशा भागता दिखाई देता है तो कबीर को उस पर दया आती है। मुल्ला का हलाल ब्रैकेट में उचित। जब मुर्गी मुर्गे या बकरे की गर्दन काटने का पर्याय बनता है तो उसके उद्धार के लिए कबीर चिंतित हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि दोष वेद या कुरान में उतना नहीं है जितना इस विषय तृष्णा में है, जो वेद या कुरान को ठीक से समझने नहीं देती। पैराग्राफ चेंज। कबीर अपने जमाने की अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति थे और मायावाद उनके जमाने का बहुचर्चित विषय था। पृष्ठ संख्या 70। अतः उनके माया संबंधी प्रयोगों में इस सैद्धांतिक परिचय का पता मिले तो स्वाभाविक ही है। विद्वानों ने संभवतः इसलिए कबीर की माया पर विचार करते हुए मंतव्य प्रकट किया कि कबीर ने माया के संबंध में जो भी कुछ कहा है वह वस्तुतः वेदांत द्वारा निर्धारित अर्थ में ही है। कुछ अन्य विद्वानों ने शायद इसी आधार पर कबीर को वेदांती सिद्ध करने की कोशिश की है। जहां तक मायावादी तर्क परंपरा से परिचय का प्रश्न है, उस पर बहस अनावश्यक है। जिस तरह राम संबंधी तत्कालीन चिंतन से वे परिचित थे, उसी तरह माया के वेदांत द्वारा निर्धारित अर्थों से भी वे परिचित रहे हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह राम की धारणा को उन्होंने आधुनिक मूल्य दृष्टि से संबंध करके उसे व्यवहारिक मर्यादा दी, उसी तरह माया को समस्त दार्शनिक तर्क जाल से मुक्त करके उसे विषय तृष्णा का पर्याय बनाने का श्रम किया है और इस तरह माया को दार्शनिक शब्दावली में सत सत विलक्षण या अनिवर्चनीय कहने की जगह साफ साफ शब्दों में आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन की विडंबना कहा है। कबीर के प्रयोगों की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी माया जीवन और अध्यात्म मार्ग की नितांत व्यावहारिक बाधाओं की वाचक है और वह पारिभाषिक अर्थ की अपेक्षा सामान्य प्रचलित अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुई है। कबीर माया की विद्या अविद्या जैसे भेदों और वचनीय अनिवर्चनीय जैसी व्याख्याओं की बहस में कहीं फंसते नहीं दिखाई देते। उनकी माया विषय तृष्णा, कामपरता, स्वार्थ, कनक कामनी, धन यश आदि की वाचक है। इसी अर्थ में उन्होंने माया जैसे उलझनदार और दार्शनिक तत्व चिंता से संबंध विषय को व्यावहारिक आधार भूमि दी है। वस्तुतः आज की सामान्य हिंदी भाषी जनता जिन व्यावहारिक अर्थों में माया शब्द का प्रयोग करती है, कबीर ने ठीक उसी व्यावहारिक अर्थों में माया का प्रयोग किया है। पृष्ठ संख्या 71। माया जैसे दार्शनिक विषय को ठोस व्यावहारिक यथार्थ की धरती पर खड़ा कर देना, अनिवर्चनीय को स्पष्टतः वचनीय बना देना कबीर जैसे महापुरुष से भी संभव है। दर्शन के क्षेत्र में यह कबीर का अभूतपूर्व योग है, जिसे मैं माया का आधुनिकीकरण कहता हूँ। पैराग्राफ चेंज। कबीर साहित्य में माया की चर्चा पग पग पर मिलती है। क्या तो नहीं कहा जा सकता कि वेदांत स्वीकृति अर्थ में कबीर ने माया का प्रयोग किया ही नहीं है, पर इतना अवश्य है कि माया आध्यात्मिक लौकिक उत्कर्ष के मार्ग में बाधक सिद्ध होने वाली तृष्णा की समशील ही अधिक है। कबीर ने निर्वाण, जीवन उन्मुक्ति या भक्ति के मार्ग में तृष्णा को सर्वाधिक दोषी ठहराया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आशा तृष्णा, यस मान, एक शब्द में आसक्ति या तृष्णा मात्र को भ्रम या माया कहकर अस्वीकार किया है। वेदांत की माया से भी वे परिचित है, पर बहुत कम। कबीर व्यवहारवादी थे, उन्हें खाली बैठकर न तो तत्व चिंतन की सुविधा मिली थी, न उनकी आवश्यकता ही थी। अतः उनकी माया आध्यात्मिक लौकिक उत्कर्ष के मार्ग में बाधा के रूप में खड़ी होने वाली तृष्णाओं का अर्थबोध कराती है। कबीर साहित्य में प्राप्त माया के लगभग 95% प्रयोग विषय आसक्ति या विषय तृष्णा को ही माया मानने मनवाने का आग्रह करते हैं। प्रश्न संख्या 72। विषय तृष्णा का सबसे स्पष्ट रूप मनुष्य की कामपरता में दिखाई पड़ता है। लौकिक आध्यात्मिक उत्कर्ष के मार्ग की यह सबसे प्रबल बाधा है। कबीर ने भी काम की इस प्रबलता को पूरी तरह स्वीकारा है। उनके मत से काम प्रत्यक्ष काल है, अपार शक्ति वाला योद्धा है, और जब यह शरीर में उमड़ता है तो ज्ञानियों को भी चंचल बना देता है। काम जन्य दारुण पीड़ा को असह्य बनाते हुए कबीर ने कहा है कि इस शरीर में बसने वाले मदन चोर ने मेरे ज्ञान रत्न को हर लिया है। खैर, मैं तो सामान्य अनाथ जन हूँ, इस काम ने किस किस को नहीं ठगा है, मेरी क्या बिसात। सनक, सनंदन, शिव, सुखदेव, ब्रह्मा, विद्वान लोग, योगी, जटाधारी सभी अवसर आने पर इसके सामने परास्त हो गए हैं।